नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देखो जरासंध आज भी नहीं मरे, कबीर जी जल्दी मचावे, इतो जल्दी मर जाते तो भगवान की कायम विशेषता होती। कल भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र दिलवा दिया। एक तरफ तो भगवान अपने शिविर में दारुक से बात करते हैं कि कल ऐसे रथ रखना, यूं करना, वो करना। दूसरी तरफ उसी समय भगवान अर्जुन को शंकर जी के पास सपने में ले जाते हैं। उठ करके अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास सब लोग इकट्ठे होते हैं और अर्जुन ने भी आकर कहा, महाराज आज जयद्रथ के वध का दिन है। युधिष्ठिर जी ने भी कह दिया कि तुम्हारे मुख पर जो कांति है और श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है उसमें ऐसा लगता है तुम निश्चित विजय को प्राप्त होगे। अर्जुन ने भी कहा कि भैया रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक सपना देखा, पूरा सपने का वर्णन सुना दिया। सब लोग अपने अपने सेना शिविर से सेना ले ले करके और आगे डट गए। अर्जुन ने सात्यकी से कहा था कि सात्यकी, महाराज युधिष्ठिर के पास तुम सदा रहना, क्योंकि द्रोणाचार्य आज दो मोर्चों पर सावधान रहेंगे। इधर जयद्रथ को बचाएंगे, यदि हम लोग जयद्रथ की तरफ भी सब लग गए तो वो पीछे से युधिष्ठिर को कैद भी कर सकते हैं। इसलिए आप युधिष्ठिर के पास पूरी रक्षा की सामग्री के सहित दल बल सहित रखना। सात्यकी तुम तो कृष्ण के समान वीर हो, मुझे इस समय तुम पर और प्रद्युम्न पर जैसा भरोसा है वैसा किसी पर नहीं है। मेरी चिंता छोड़ करके युधिष्ठिर के पास रहना। ये सब कल बात हो गई। धृतराष्ट्र ने आगे कहा कि संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख और शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया? मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किस ने युद्ध किया? अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया, ऐसी दशा में मेरे पक्ष के लोग निर्भय कैसे रह सके होंगे? अरे संजय, मुझे अब बड़ा दुख होता है जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहां आए थे। उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो, ये अच्छा मौका हाथ में आया है, दुर्योधन इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। कृष्ण ने भी दुर्योधन को बहुत प्रेम से समझाया परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं लगी। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन की ही बात को माना। जो जुआ खेला गया था उसमें मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। संजय विदुर जी, भीष्म जी, शल्य जी, भूरिश्रवा, पुरु मित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोण, ये सब लोग जुआ नहीं होने देना चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता तो अपने जाति भाई मित्र सुहृद सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। क्या करूं? मैंने इसको समझाया था संजय कि हे दुर्योधन, पांडव बड़े सरल स्वभाव के हैं, इनकी वाणी में बड़ा मिठास है, व्यवहार में बड़ी पवित्रता है, किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखते हैं, ये आदरणीय है, बुद्धिमान है, इनके साथ मेल मिलाप करने से तुमको सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है, मरने पर उसका कल्याण होता है। पृथ्वी का राज्य भोगने के लिए इस समय पांडव लोग योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं और शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वैसा मान लेंगे, वे धर्म मार्ग पर हैं। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, वाली, कृपाचार्य, बड़े बूढ़े लोगों ने जो तुम्हें हित की बात कही है उसे अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि पांडव उनकी बात का बड़ा आदर करते हैं। और दुर्योधन, श्री कृष्ण कभी धर्म को नहीं छोड़ सकते और पांडव कृष्ण के अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूंगा तो पांडव लोग नहीं टालेंगे, क्योंकि वे धर्मात्मा है। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं मानी। तुम ही बताओ जिस पक्ष में कृष्ण जैसा सारथी हो, अर्जुन सरीखा योद्धा हो, उसकी कभी पराजय हो सकती है? पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाऊं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, इन सब ने मिलकर अब क्या सलाह की है? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्रित हुए मेरे सभी पुत्रों ने आगे कौन सा काम किया? मंदबुद्धि, लोभी, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा रखने वाला रागांध दुर्योधन, अन्याय और न्याय जो कुछ भी किया हो, करता हो, सब मुझे बताओ। संजय कहते हैं, महाराज, आप मेरे सामने ऐसी चिकनी चुपड़ी अच्छी बातें बता बता कर अपने को निर्दोष साबित करना चाहते हो? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? आपका इसमें कोई अन्याय कम है? नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने का अब क्या लाभ होता है? अब आप रोना पीटना करते हो, सारा दोष दुर्योधन पर मांगते हो। इसलिए महाराज, अब आपकी कोई युक्तियां नहीं चलेंगी। यदि आप अपने पुत्रों को युद्ध के अवसर पर भी रोक दिए होते, यदि आप मन में दृढ़ निश्चय करके दुर्योधन को फटकार देते, अथवा इतने पर भी दुर्योधन नहीं मानता तो एक दुर्योधन के पीछे आप सबको रोककर उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लेते, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित करते, या आप यदि पुत्र सन्मार्ग में नहीं जाता है तो आप अपने वचनों पर दृढ़ रहते, तो आज आप इस प्रकार से रोने के दिन को नहीं देखते। आप ये समझते हैं कि मैं अब दुर्योधन की निंदा कर अपने को निर्दोष साबित कर दूं? कभी नहीं होगा। इस समय सारा जगत आपके व्यवहार पर थूक रहा है, आपके पक्षपात की सब जगह निंदा होती है। आपने तो सत्य सनातन धर्म को तिलांजलि देकर जो दुर्योधन ने कहा, जो दुशासन ने कहा, जो कर्ण और शकुनी की चालें चली गईं, उनमें हां में हां मिला दी। इतने बड़े देश के आप सम्राट होकर और धर्मपरायण पांडवों के अभिभावक होकर क्या आपने ये आचरण किया है और अब आप अपना विलाप कलाप सुना रहे हैं, ये सब स्वार्थ और लोभ के कारण से बोल रहे हैं। विष मिलाए हुए शहद के भांति आप ऊपर से मीठा बोलते हैं, लेकिन आपका भीतर का भाव जहर के समान सबको मारने वाला निकला। आपको मालूम है भगवान ने एक बार आपसे संधि की बात कही, जब आपका रुख देख लिया तो भगवान दूसरे दिन वहां से रवाना हो गए, आपसे बात करने की इच्छा नहीं हुई। जितना आदर भगवान संधि का प्रस्ताव लेने से पहले आपका करते थे, लेकिन जब आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए, पुत्र मोह के दलदल में फंस गए, तब से आपके प्रति भगवान की आदर बुद्धि खत्म हो गई। आपने आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और उन्होंने आपको और आपने उनको रोका नहीं। भरी सभा में एक अबला का अपमान हुआ और आपके कोई दर्द नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको खाता चला गया है और यही आपको समाप्त करके रहेगा। पहले आपने पांडवों के बाप दादों का राज्य छीना और अब आप पांडवों का राज्य छीनना चाहते हैं। महाराज, ऐसा नहीं होगा। अब तो युद्ध सिर पर गरज रहा है। आपने पूछा कि हमारी सेना की क्या स्थिति है, अब उसको मैं क्या बताऊं। महाराज, जब से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तब से आपके सेना में एक भय और एक डरावना वातावरण छा गया है। रात बीत गई, प्रातःकाल सब योद्धा इकट्ठे हुए, युद्ध के शंख बजा रहे थे, पर सबके मन, आपकी सेना के सबके मन अंदर से टूटे हुए थे। आचार्य द्रोण ने जयद्रथ से कहा, जयद्रथ, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 हाथी, 14,000 गजारोही और 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे से 6 कोस पीछे चले जाओ। ये पांडव लोग इधर से आएंगे, तुम 6 कोस पीछे चले जाओ, तब तक तो हमसे लड़ेंगे ना। मैं यहां पर मोर्चा बांध करके खड़ा हूं, पांडवों की क्या औकात है, इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, पांडव तुम्हारा क्या करेंगे, बेखटक के रहोगे, निश्चिंत होकर के रहोगे। द्रोणाचार्य ने थोड़ा ढाढ़स बधाया और फिर उसके बाद सिंधुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। अंदर ही अंदर घबराया हुआ, टूटा हुआ था। ऊपर से वो कभी कभी अपनी उदासी बता भी देता था। 10,000 सिंधु देशी घोड़े, धीमी चाल से चलने वाले और हाथी, ये सब उसके पास में सेना के रूप में थे। इसके बाद आपका पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज के कार्य के लिए सेना के अग्रभाग में डट गए। द्रोणाचार्य का बनाया हुआ वो चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था। उस पद्मगर्भ व्यूह में सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यूह और बनाया हुआ था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हो गए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया, उसके पीछे काम्बुज नरेश और जलसंध और उसके पीछे दुर्योधन और कर्ण थे। शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए थे। इन सब के पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। दुर्योधन के इस बनाई हुई शक्ति व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जरासंध को कौन शक्ति चुनौती दे सकती है? कौरवों की सेना अपने व्यूह को देखकर नगारे बजाने लगी, कोलाहल करने लगी। उसी समय रौद्र मुहूर्त आया और रौद्र मुहूर्त के अंदर अर्जुन अपने रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। नकुल के पुत्र शतानिक और धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की। कुपित काल के समान, वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की जोर से टंकार करके युद्ध भूमि में ज्यों ही पदार्पण किया, उस समय उनके तेज को देख करके सारे कौरव सेना में उदासी छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का वो तेज बढ़ाने के लिए अपना पांचजन्य शंख बजाया। आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लग गए, अचेत हो गए और हाथी घोड़े आदि जो वाहन थे वो मलमूत्र छोड़ने लग गए। इस प्रकार आपकी सेना में भयंकर भय छा गया। तब उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए आचार्य वगैरह ने दुंदुभियां बजाई, शंख बजाए, मृदंग बजाए। आपा क्यों करो, तो कौरव करे, आपा क्यों करो, आपा तो कृष्ण भगवान का नहीं है। जब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए, मैं उसकी हस्ती सेना को देखकर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। दुर्मर्शन एक योद्धा था, उसके पास हाथी की सेना थी। अब व्यूह बनाया हुआ, उसमें किधर से प्रवेश करें, उधर प्रवेश करूंगा। कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ को हांका, बस फिर क्या था, दोनों ओर से तुमुल संग्राम छिड़ गया। दुर्मर्शन कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगा। महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने प्रारंभ कर दिए। बात ही बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र बिखरी पड़ी दिखाई दी। आपके सैनिकों ने सब ओर से अर्जुन ही अर्जुन देखा, बार बार कहते, ये अर्जुन है, ये कहाँ है, वो खड़ा है, इधर खड़ा है, ऐसे पागल के समान चिल्लाने लग गए। इस भ्रम में पड़कर कोई कोई आपस में लड़ने लग गए। काल के वशीभूत होने वाले आपके सैनिक अर्जुनमय सारा संसार देखने लगे, लव लुहान होकर मरणासन्न हो गए, गहरी वेदना के कारण बेहोश हो गए और कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार पुकार करके मर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन के मार के कारण जब उनकी ओर मुंह फेरकर देख भी नहीं सकती थी, इस प्रकार वीर मैदान छोड़कर भाग गए। आपकी सेना का उत्साह नष्ट हो गया। तब सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न देखकर अपने टूटे मन से आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और अर्जुन को ललकारने लगा, इन कायरों से तुम क्या युद्ध करते हो, ये महावीर दुशासन तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़ा है। एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा उग्र रूप धारण किया और उधर अर्जुन ने क्रोध में भरकर भीषण सिंहनाद किया। वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर चीतकार कर करके पट पट पर पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। अर्जुन की फुर्ती देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी पर रखते हैं, कब खींचते हैं, कब छोड़ते हैं और कब तरकस से नया बाण निकलता है, इसको कोई देख नहीं सका। इतनी फुर्ती थी, ये मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित सेना के पीछे जाकर छिप करके बैठ गए। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यू के द्वार पर खड़े हुए थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे लिए आप पिता के समान हैं, आप मेरे लिए कल्याण की कामना कीजिए। जिस तरह आप अश्वत्थामा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, उसी प्रकार वही स्नेह आपको मेरी रक्षा के लिए भी देना चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप मेरे शत्रु पक्ष में जरूर खड़े हैं, लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, युद्ध भूमि में खड़े हैं इसलिए मैं तुम्हें यह कहता हूं कि मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। बड़े हंसते हंसते गुरुदेव ने अर्जुन के रथ, घोड़े, ध्वजा, सारथी सबके ऊपर पहने पहने बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने भी अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य के बाणों को रोक दिया। दोनों का बड़ा भीषण संग्राम होने लगा। द्रोणाचार्य ने तुरंत उनके बाण काटे और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाण कृष्ण और अर्जुन दोनों पर चोट करने लगे। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर अर्जुन की आचार्य की सेना का संहार करने लगे। धनंजय माने अर्जुन। उनके बाणों से कट करके अनेकों योद्धा घोड़े आदि धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को, 73 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया और 3 बाणों से उनकी ध्वजा बीन दी। फिर एक ही क्षण में बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन को इस प्रकार युद्ध देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, द्रोणाचार्य तुम्हारा सारा समय यही नष्ट करना चाहते हैं। तुमको अपनी प्रतिज्ञा को याद रखना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है। द्रोणाचार्य को छोड़ दो, ये यहां उलझा देंगे, सूर्य अस्त हो जाएगा। देखो अभी बहुत सा समय तो हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ो, द्रोणाचार्य से मत उलझो, अपना लक्ष्य आज जयद्रथ है। अर्जुन ने कहा, केशव, जो आपकी आज्ञा हो वही आप कीजिए। जिधर आपको रथ को घुमाना हो उस दिन आप रथ को घुमाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को आचार्य की परिक्रमा करके बाण छोड़ते हुए भी आगे बढ़ गए। द्रोण ने कहा, ए अर्जुन, ये तुमको मैंने कब सिखाया? जिसके साथ युद्ध कर रहे हो उसको पीठ दिखाकर मरते हो? शत्रु को परास्त किए बिना तुम आगे बढ़ते हो? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने आपको गुरुदेव रूप से संबोधित किया है। मेरे मन में आपको मैंने कभी शत्रु माना ही नहीं है। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। मैं मेरे काम के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना समय आपके साथ युद्ध करने में नहीं लगाऊंगा। साफ कहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर अंदर ही अंदर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि जो ऐसा लक्ष्य रख करके युद्ध करता है वो विजयी होता है। अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए बड़ी उत्सुकता से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे चक्र रक्षक पांचाल कुमार युधामन्यु उत्तमोजा भी चल दिए। अब जय कृतवर्मा, काम्बुज नरेश और सुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से खूब रोका। विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम हुआ। कृतवर्मा ने अर्जुन के बाण लगाए, अर्जुन ने उसके 103 बाण मारकर उसको घायल कर दिया। हंस करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही 25-25 बाण उस पर छोड़ने लगे। उसने अर्जुन का धनुष काटा और फिर अर्जुन ने उसका धनुष काट दिया। ऐसे दोनों आपस में युद्ध करते रहे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कृतमा पर दया मत करो, इस समय आपका जो आपस का संबंध है उसको छोड़ो और हो सके तो इसके साथ युद्ध करके इसको मारो और नहीं तो अपने जयदेव की तरफ बढ़ो, अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर दो और काम्बोज वीरों की सेना को सेना का संहार करो। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर महाक्रमी श्रुतायुद्ध आया, महापराक्रमी श्रुतायुद्ध, विशाल धनुष लेकर कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करता है, उसके टुकड़े कर देंगे। उस समय ये श्रुतायुद्ध वरुण का पुत्र था अर्जुन की ओर दौड़ा। महानदी पर्णाशा इसकी मां थी, उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो, ऐसा वरदान दो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, हे श्रुतायुध पुत्र, मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि इस समय जो मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र दे रहा हूं इसके कारण तू अवध्य होगा, परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसको मरना पड़ेगा, अवध्य होने का ही वरदान देता हूं, अमर होने का नहीं दे सकता। यह कहकर वरुण ने श्रुतायुध को जो एक गदा दी थी उस गदा को देते समय कहा कि ये गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो, ऐसा कर रहे होगे तो ये गदा तुम्हारे पर ही आकर गिर जाएगी। पर करें क्या, श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था। उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने इस गदा से कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर ले लिया, परंतु भगवान कृष्ण तो वहां युद्ध में लड़ नहीं रहे थे, लड़ने का काम तो अर्जुन कर रहे थे। उसने अनुचित प्रयोग किया तो वो गदा लौटकर श्रुतायुध को ही पूरा कर दिया, इसलिए उसने लौटकर उसी को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार श्रुतायुध का अंत हो गया। भगवान ने कहा, अर्जुन और आगे बढ़ो, अभी अपने को आगे बढ़ते रहना है। इतने में काम्बुज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण आया, बहुत उसने भी युद्ध किया, उसके पास एक भयंकर शक्ति थी, उससे अनेक प्रकार की चिंगारियां निकलती थी। अर्जुन के ऊपर उसने उस शक्ति का प्रयोग किया, अर्जुन थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। चेत होने पर कंक पत्र वाले 14 बाणों से उसने सुदक्षिण के घोड़े, ध्वजा, सारथी सबको नष्ट कर दिया और अंत में सुदक्षिण की छाती पर एक तीखी धार वाला बाण छोड़ा, वो वहीं पर पूरा हो गया। भगवान ने कहा, बस जो वीर मरता जाता है उसके आगे पीछे कुछ मत देखो, अर्जुन आगे बढ़ो। अब आगे बढ़े, अभिशाह, सूरसेन, शिवी, वसाती, इन जातियों के वीर पुरुष आए अर्जुन के सामने। 6,000 योद्धा एक साथ, अर्जुन ने ऐसे बाण छोड़े कि सब धराशायी होते चले गए, उनके सिर भुजाएं कट कट करके जमीन पर गिरती चली गई। उसके बाद श्रुतायु आया, श्रुतायु क्रोध में भरकर अर्जुन से खूब युद्ध करने लगा, बड़ा कोलाहल हुआ, अर्जुन को अचेत कर दिया। भगवान कृष्ण चिंतित हुए और फिर अर्जुन होश में आया तो आगे देखा कि श्रुतायु युद्ध में डटा हुआ है। तब उसने ऐन्द्रास्त्र छोड़ा, ऐन्द्रास्त्र से उसने उसके सब भुजाएं, मस्तक वगैरह काट दी और श्रुतायु और अच्युतायु सबका वध हो गया। फिर आगे चलने लगे और अर्जुन ने कुपित होकर अपने बाणों से एक एक मुहूर्त में हजारों कौरवी सेना को यमराज के पास पहुंचा दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन में खूंद डालता है, कमल वन को खूंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचलते चले जा रहे हैं। कोई क्षत्रिय वीर उनके सामने ठहर नहीं रहा है। इस युद्ध में अनेकों गजारोही म्लेच्छ धनंजय के बाणों से बिंद कर धराशायी हो रहे हैं। अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया अर्जुन ने। मुंडित अर्धमुंडित जटाधारी और दाढ़ी वाले आचारहीन म्लेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट दिया। फिर राजा अम्बिष्ट आया, उसने अर्जुन की गति को रोका। फिर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उसके घोड़ों को और उसके धनुष को काटने के बाद अम्बिष्ट को भी एक जोर से गदा लेके प्रहार किया और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली, उसका मस्तक भी टूट गया। संजय कहते हैं, राजन इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के वध के लिए उद्यत होकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरते हुए व्यूह के अंदर आगे बढ़ते गए और उनके हाथ से बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब घबरा करके आपकी सेना इधर उधर अपना प्राण बचाने लगी। दुर्योधन अकेला ही रथ पर चढ़कर लोगों को रोकता है, योद्धाओं को रोकता है और बड़ा क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य के पास आकर कहने लगता है, आचार्य ये क्या तमाशा कर रहे हैं, ये आपका पौरुष? पुरुष सिंह अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचल करके भीतर में घुस गया, आप देखते जा रहे हैं। यदि आपको युद्ध नहीं करना था तो आप पहले ही हमको मना कर देते। दुर्योधन किस प्रकार सेना को तितर बितर कर रहा है, अब आप विचार करें हमें क्या करना चाहिए। आप ही का भरोसा है और आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है उस प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। अब तो जयद्रथ की रक्षा के लिए हमें बड़ा संदेह हो रहा है। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांग कर सेना में घुस नहीं सकेगा, परंतु मैं देखता हूं वह आपके सामने व्यूह में घुस नहीं गया, व्यूह को चीरता जा रहा है। हमारी सेना विकल होकर के नष्ट भ्रष्ट हो रही है और आप अपनी इन आंखों से देख रहे हैं। बिचारे सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे, यदि आपने उनको वरदान न दिया होता कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा तो वो कभी किसी प्रकार यहां नहीं रुकते। मैंने उनको रोका, मैंने कहा अरे द्रोणाचार्य पर भरोसा करो, आपने भरोसे का ये फल दिखाया। मैंने बड़ी मूर्खता की, आपकी रक्षा पर विश्वास किया, सिंधुराज को समझा बुझा करके यहां रख लिया, नहीं तो इस इतनी विशाल पृथ्वी पर हम सिंधुराज को ऐसी कंदरा में ले जाकर छिपा सकते थे जहां अर्जुन उनको बरसों बरसों तक नहीं ढूंढ पाते। हे द्रोणाचार्य जी, आपने हमारे साथ विश्वास को नहीं निभाया है। मेरा विश्वास है मनुष्य यमराज के दाड़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण अब किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए सिंधुराज की रक्षा हो। हे गुरुदेव, मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उससे आप नाराज नहीं होना, आप किसी प्रकार उन्हें जयद्रथ को बचाने में प्रयत्न कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारी कितनी कितनी बातों को मैं बुरा मानूं, तुमने आज तक कौन सी अच्छी बात कही जिसके ऊपर मैं पूर्ण विश्वास करता और आज ही तुमने मुझे बुरा कहा है उस पर मैं विचार करता। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन तुम हमें समझ नहीं सके हो, तुम हमारी बात को ध्यान पूर्वक समझो। अर्जुन का सारथी कौन है, उसकी आंखों की तरफ कभी देखा, उसके चेहरे पर कभी तुमने देखा? और घोड़ों की रश्मि अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से अर्जुन को इशारा करते हुए तुमने देखा? यदि ये नहीं देखा तभी तुम ऐसी बातें बनाते हो। क्या उनमें तेज, क्या उनमें शौर्य, कैसे उनके ऊंचे कान खड़े हुए घोड़े। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, मैं उधर ध्यान दे रहा हूं। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए मैं व्यूह के द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज अर्जुन तो केवल जयद्रथ पर विचार करेगा और मैं युधिष्ठिर को कैद करने पर विचार कर रहा हूं। ऐसा करो कि मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम जाओ अर्जुन से युद्ध करो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, आपने ये मेरे पर कैसे रख दिया? जो आपको भी लांग गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोकूंगा? मेरे पास तो इतना बल है नहीं। फिर आपने कहा कि कृष्ण और अर्जुन दोनों जहां बैठे हुए हैं उनको कौन जीत सकता है, ये बात मेरे समझ में आती, फिर मुझे उपालंब क्यों देते हो? द्रोणाचार्य ने कहा, मेरे विचार से दुर्योधन, मेरे विचार से तो संग्राम में इंद्र भी इनको नहीं जीत सकता, अर्जुन का पार पाना बड़ा मुश्किल है, कृतवर्मा और आपको भी जिसने परास्त कर दिया, श्रुतायुध, सुदक्षिण, अम्बिष्ट इनको भी जिसने मार गिराया, मैं अकेला कैसे युद्ध करूंगा? फिर तुमने युद्ध क्यों ठाना? ऐसे एक एक योद्धा वीरा से तुम डरते रहोगे, तुमने क्यों युद्ध ठाना? कुरुराज, अर्जुन से युद्ध करना मामूली बात नहीं है। तुम्हें एक उपाय बताता हूं, आओ मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सोने का अभेद्य कवच दूंगा, उस कवच को बांध कर जाओ दो, वो अर्जुन के अलावा किसी का भी शस्त्र, अर्जुन का भी अस्त्र तुम्हारे उस कवच के अंदर का भेदन नहीं कर सकता। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस तीनों लोक में तुमसे युद्ध करने के लिए कोई सामने आएंगे तो कोई भय नहीं होगा। कवच धारण करो और अर्जुन के साथ युद्ध करो। शास्त्र विधि के अनुसार अभिमंत्रित जल से आचमन किया, चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करे। इसके बाद द्रोणाचार्य फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने ये मंत्र और कवच इंद्र को दिया था, इंद्र ने इस कवच को पहनकर वृत्रासुर के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की थी, फिर इंद्र ने यह मंत्रमय कवच अंगिरा जी को दिया था, अंगिरा ने इसे पहन करके अपने पुत्र बृहस्पति को दिया था, बृहस्पति ने अग्निवेश्य नाम के अपने शिष्य को दिया और अग्निवेश्य जी ने ये कवच मुझे दिया और मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक ये तुम्हें पहनाता हूं, जाओ उससे युद्ध करो, अर्जुन से युद्ध करो। द्रोणाचार्य के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार होकर राजा दुर्योधन त्रिगर्त देश के हजारों रथी और अनेक महारथियों के साथ अर्जुन की ओर चल पड़ा। संजय कहते हैं, महाराज जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में बहुत दूर तक प्रवेश कर गए, उनके पीछे दुर्योधन चला आया तो पांडवों ने सोमक वीरों के साथ लेकर बड़ा कोलाहल करते हुए एक तरफ द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ दुर्योधन का भी उन्होंने मार्ग रोक दिया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ बड़ा घमासान युद्ध हुआ, दो दो मोर्चे हैं। ऐसा युद्ध आज तक न तो हमने कभी देखा और न कभी सुना। इधर पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न पांडव लोग आचार्य पर खूब प्रहार कर रहे थे और आचार्य भी उन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। धृष्टद्युम्न ने बाणों की झड़ी लगा दी। द्रोण पांडवों की जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे उसी की ओर से बाण बरसा बरसा कर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृतराष्ट्र से सामना होने पर उनकी सेना के तीन विभाग हो गए। आपकी सेना के पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले। देखो जलसंध और जरासंध ये दोनों अलग अलग हैं। कुछ जलसंध की ओर चल पड़े हैं और कुछ द्रोणाचार्य के पास रह गए। आपकी सेना का व्यू था वो तो खत्म हो गया। द्रोणाचार्य अपनी सेना को संगठित करते, धृष्टद्युम्न उसको तितर बितर कर देते। आपकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। पांडवों की मार से आपकी सेना की बड़ी दुर्दशा हुई। वे योद्धा अपने आप में बड़े लज्जा का अनुभव करने लगे। जिस प्रकार धाम घाम से तपी हुई आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। कुंतीनंदन भीमसेन को कई वीरों ने घेरा। शिबी के पुत्र गोवासन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। सब खूब आपस में युद्ध करने लगे और एक एक को एक एक ने रोकना चालू किया। राक्षसराज घटोत्कच अलायुद्ध ने घटोत्कच पर अलायुद्ध ने चढ़ाई कर दी। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। व्यू के मुहाने पर युद्ध वीरों का द्वंद्व युद्ध हो रहा था। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव बाणों की वर्षा करके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने शकुनी का नाक में दम कर दिया। फिर वो सेना जाकर द्रोणाचार्य की सेना में जा मिली। सब व्यू उनकी खत्म हो गई। द्रोणाचार्य जी ने बड़ी बाणों की वर्षा की। धृष्टद्युम्न उनकी बाणों को काटते गए। इस प्रकार से खूब ये आपस में बाण चले। सात्यकी भी जो अर्जुन का शिष्य था वो भी खूब घमासान युद्ध कर रहा था। इस युद्ध को देखने के लिए विमानों पर बैठे हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण विद्याधर नागगण ये युद्ध की कलाओं को देख रहे थे और बड़े आश्चर्य के अंदर एक एक के कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में ही सात्यकी ने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर में दूसरा धनुष लिया, सात्यकी ने उसको भी काट दिया। इस प्रकार जो जो धनुष लेते गए सात्यकी उसको काटता चला गया। 100 धनुष काट डाले। सात्यकी का ये अतिमानुष कर्म देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य ने मन ही मन विचार किया, शाबाश मेरे शिष्य का शिष्य सात्यकी कितना वीर है। मेरा शिष्य अर्जुन और अर्जुन का शिष्य सात्यकी मेरे बताए हुए सारे शस्त्र जानता है। फिर उन्होंने नए धनुष लिए, उसको भी तोड़ दिया। आचार्य कुपित हो गए। उन्होंने आग्नेयास्त्र छोड़ा तो सात्यकी ने वारुणास्त्र छोड़ दिया। उस समय द्रोणाचार्य यद्यपि खूब शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे थे परंतु अंदर से सात्यकी का युद्ध कौशल देखकर मन में बड़ा गौरव का भी अनुभव कर रहे थे। संजय कहने लगे, राजन अब सूर्य नारायण ढलते जा रहे हैं। कौरव पक्ष के योद्धाओं में कई योद्धा तो खड़े हुए थे, कई बार बार आकाश में देखे, कोई पीठ दिखाकर, कोई कैसे। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते, श्री कृष्ण उससे बढ़ते चले जाते थे। अर्जुन का रथ जिस ओर जाता था उस ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से जा रहा था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा उस समय अर्जुन के घोड़े भूख से प्यास से व्याकुल हो गए और बड़ी कठिनता से रथ को खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्रों मरे हुए हाथी घोड़े मनुष्य और रथों के ऊपर से होकर चलना पड़ता था। खूब रथ डगमगाता लेकिन भगवान के स्थैर्य से रथ गुड़कता नहीं था। कहां मार्ग बनाए, हाथियों के ऊपर से घोड़ों के रथों के ऊपर से वो रथ जाता था। बड़े उल्लास के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी सेना भी आगे आ रही थी। उस समय एक बाण से विंद आया और अर्जुन से युद्ध करने लगा, अर्जुन उसका सिर काट दिया। विंद का भाई आया, उसका भी सिर काट दिया, दोनों मारे गए। और फिर आगे चलते गए, अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके साथ की सेना का सफाया किया। अंत में श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण घोड़े इन बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं, इनके शरीर से खूब खून निकल रहा है, घोड़े थक गए हैं, जयद्रथ अभी भी दूर है, ऐसी स्थिति में आपको क्या उचित लगता है? मेरे विचार से तो जो उचित लगता है वो निवेदन करता हूं। आप एक बार बड़े आनंद से निश्चिंत होकर घोड़ों को छोड़ दीजिए और अपने हाथ से आप इनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन के कहने पर कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम जैसा कहते हो मैं भी यही चाहता था। अर्जुन ने कहा, केशव मैं कौरव की सेना का संहार खड़े खड़े कर लूंगा, इतने आप अपने घोड़ों को तैयार कर लीजिए। अर्जुन रथ से उतर गए, लेकिन चौकन में होकर बड़ी सावधानी से मंडलाकार में चारों तरफ से घूमते घूमते बाण छोड़ते गए। उस समय विजयाभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर, अरे क्षत्रियो ये अर्जुन रथ छोड़कर जमीन पर खड़ा है, बड़ा अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इस पर बाणों की वर्षा करके इसको समाप्त कर लो, या इसको घेर लो, या इसको बंदी बना लो, बाणों से ढक दो, सूर्यास्त तो होने वाला है, अर्जुन तो यूं ही मर जाएगा, इस मौके को किसी प्रकार से तुम जाने मत दो। कहते तो सभी ऐसा ही थे, परंतु महाराज कोई अर्जुन के पास आने में संकोच करता था, कैसे जाए, उसके बाण इतने तेजी से चलते हैं समुद्र के ऊपर, जैसे लहर पर लहर, लहर पर लहर, इसी प्रकार से उसके बाण चल रहे थे। इतनी खून की वहां पर नदी हुई, हाथी रूपी नौका मानो तिर रही हुई, पदाति रूपी मछलियां कल्लोल कर रही हुई, अगणित रथावली अनंत तरंग मालाएं बनी हुई थी, पगड़ियां कछुए के समान थी, छत्र और पताकाएं फैन के समान थी। अर्जुन से युद्ध करना मामूली बात था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय अब तो बड़ा अच्छा मौका था, मेरे प्रिय पुत्रों ने ये मौका क्यों गुमाया? अर्जुन और कृष्ण जब पृथ्वी पर खड़े थे, अर्जुन को तो उस समय मार देना चाहिए था। संजय ने कहा, महाराज जिस प्रकार लोभ अकेला सारे गुणों को खत्म कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन भी पृथ्वी पर गांडीव धनुष लेकर खड़ा हो जाए, सब राजाओं को खत्म कर सकता है। कितनी बढ़िया बात है, लोभ। एक आदमी में बहुत गुण है लेकिन लोभ ही ज्यादा है तो कुछ नहीं है, ऐसे ही अर्जुन सब राजाओं को खत्म कर सकता है। कहने में तो आपने भी कह दिया, आपको मालूम है वहां क्या तमाशा हुआ? उस समय कृष्ण ने घबरा करके अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन घोड़ों को बहुत प्यास लगी है, यहां कहीं जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े पानी पीना, हर कोई पानी पीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये घोड़े बड़े दिव्य हैं और इनके लिए दिव्य जल चाहिए। अर्जुन ने कहा, केशव अभी पृथ्वी को फोड़कर घोड़े के लिए पानी पीने योग्य सरोवर बना देता हूं। एक तरफ शत्रुओं का बाण वर्षण हो रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने फुर्ती दिखाकर जमीन पर ऐसे बाण छोड़े, बड़ा सुंदर स्वच्छ जलाशय वहां पर प्रकट हो गया, बाण मारे खुदती गई पृथ्वी। एक क्षण में तैयार किए हुए उस दिव्य सरोवर को देखने के लिए वहां आकाश से नारद मुनि आए और नारद मुनि ने वो जल देखा, जल देख के आश्चर्य किया, इतना मीठा, इतना सुस्वादु, इतना शीतल जल। नारद जी देखकर आश्चर्य करने लगे। अर्जुन ने देखा कि इस समय कोई योद्धा हमारे घोड़ों पर प्रहार न करे तो उसी समय बाणों के द्वारा उन्होंने मकान बना दिया है, बाणी बाणी बाणी। और कृष्ण से कहा, आप थोड़ी देर घोड़ों को इस मकान में आराम करने दीजिए। कृष्ण हंसे और अर्जुन की आंख में आंख मिलाकर बोले, शाबाश, वाह वाह, खूब अच्छा बनाया है, तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करने के लिए ये चमत्कार भी कोई कम नहीं है। घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का ये पराक्रम देखकर आकाश में सिद्ध चारण सैनिक लोग भी कहने लगे, वाह वाह अर्जुन, कोई आश्चर्य की बात नहीं, तुम ऐसा कर दो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये लगा कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने में आगे नहीं आए, और जो जो युद्ध करते थे वो अर्जुन को एक सूत भी पीछे नहीं हटा सके, बल्कि अर्जुन तो बढ़ते चले जा रहे थे। और इधर भगवान मुस्कुराते हुए घोड़ों को खूब सहला रहे थे, बाणों के घर में ले गए। भगवान ने अपने हाथ से उनके बाणों को निकाला और फिर अपने आनंदमय हाथ से उन्होंने सारे घावों को भर दिया। घोड़े अब बड़ी उतावली के साथ हिनहिनाने लगे, उनके पैर पृथ्वी पर पड़ते नहीं थे, बड़ा जोश आया। इस प्रकार से उनको नहलाकर, घास खिलाकर, जल पिलाकर, एकदम ताजा बनाकर अर्जुन के साथ उस रथ में जोत करके बड़े तेजी से भगवान आगे सेना में बढ़ गए। आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, ओह, ऐसे कृष्ण और अर्जुन को कौन जीत सकता है, पृथ्वी पर खड़े हुए थे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, धिक्कार है हम लोगों के शौर्य और पराक्रम को, हम कहते महारथी है, अतिरथी, धिक्कार। बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार ये दोनों एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना की कोई घबराहट होती नहीं। ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर कोई कोई राजा कहने लगे, देखो जी, अकेले दुर्योधन के अपराध से आज सारी पृथ्वी पर संकट आया है, किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में ये बात अभी तक भी नहीं बैठती, वो मूर्ख अपने पुत्रों का वैसे ही पक्ष ले रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं, धृतराष्ट्र जी, कौन सुना रहा है, संजय है। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे। अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे, कोई योद्धा उनके पास फड़क फड़कते नहीं अब बनता, उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए। श्री कृष्ण सेना को रौंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हाके जा रहे थे, पांचजन्य शंख बजा रहे थे, शत्रु पक्ष के रथी उदास हो गए, धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे, तथा बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे, और उनकी बार बार दृष्टि आकाश में सूर्य की ओर जाती थी। संजय ने कहा, महाराज, अब कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने का विचार करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत उदासीन हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में रख रखा है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई, हमारे हाथ से छूटकर नहीं जाएगा, देवता भी यदि उसकी सहायता करेंगे तो हम जयद्रथ को मार करके दम लेंगे। दोनों की मुख कांति बड़ी विलक्षण, और आपके पक्ष यही समझने लगे कि बस अब तो जयद्रथ का अवश्य वध होगा। कृष्ण और अर्जुन के तेज से वो इतने प्रभावित हो गए। इस समय कृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष की बड़ी ध्वनि की, बहुत देर बाद ये दिखाई दिया है, उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए सब कुछ भूलकर आगे निकल आया। आचार्य द्रोण उसके कवच को बांध चुके थे, संग्राम में आया और अर्जुन से लड़ भिड़ा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन कुछ अभी दुर्योधन को विशेष बात मिली है। अभी अभी कितनी बार तो ये हमसे पराजित हुआ और फिर ये हमारे सामने आया है, कोई विशेष कारण होना चाहिए। मैं ये कोई कारण समझ नहीं पा रहा हूं, क्या है? तुम्हारा लक्ष्य जयद्रथ तो बाद में, पहले उस दुर्योधन को तुम क्यों नहीं ले लेते? यह आज तुम्हारे सामने बाणों का विषय बन चुका है। इतने में ही दुर्योधन पास में आया। आज दुर्योधन अभेद्य कवच पहन रखा था, इसलिए वो डरा नहीं और वो आकर के अर्जुन के सामने खड़ा होकर अपने पक्ष की बड़ाई करने लगा, अपने बल पर उसकी बड़ाई करने लगा। अर्जुन को कहने लगा, ये नपुंसक जयद्रथ को मारेगा? ऐसे उनकी हंसी उड़ाने लगा। अर्जुन को जो वहां क्रोध आया है, दुर्योधन ने तो हंसते हुए ललकारा और अर्जुन का क्रोध बढ़ा। कृष्ण और अर्जुन उस समय उसके ऊपर टूट पड़े, खूब बाणों की वर्षा हुई और जब वो बाण उसके छाती पर लगते नहीं थे, क्या बात है, इतने तीखे बाण मैं मार रहा हूं केशव, लेकिन इसके वक्षस्थल पर कोई विशेष कवच है, क्या है? इस बात को जानने के लिए बाण छोड़ा। उस बाण के द्वारा उनको ज्ञात हुआ और अर्जुन ने कहा, कृष्ण मालूम होता है दुर्योधन को ये कवच द्रोणाचार्य जी ने दी है। इस कवच धारण करने की जो शैली है वो मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति है। इसे एकमात्र आचार्य जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। ये कवच अंदर की तरफ से बिल्कुल पहरा हुआ है, लेकिन हमारे बाण के द्वारा इसका ज्ञान हो गया है, इसको अब कोई नहीं काट सकता। इस प्रकार से यहां समय लगाने में अब कोई लाभ नहीं है, अपने को आगे बढ़ना चाहिए। दुर्योधन के पास में जो रक्षक थे उनको मारते हुए चीरते हुए अर्जुन आगे की तरफ निकल गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ कोई युद्ध किया था क्या? संजय ने कहा, महाराज दोपहर के बाद पांचालों ने जो युद्ध किया था आचार्य द्रोण भी दंग रह गए। आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर बड़ी उत्साह शक्ति से उन्होंने प्रहार किए और आचार्य द्रोण वहां पर घबराने लग गए। युधिष्ठिर और आचार्य द्रोण का युद्ध हुआ, एक दूसरे पर गदा छोड़ी, फिर आचार्य ने ब्रह्मास्त्र से उस गदा को काट दिया। युधिष्ठिर महाराज रथ को लेकर चलने लगे, द्रोणाचार्य ने उस रथ को तोड़ा, द्रोणाचार्य ने टूटे हुए रथ को फेंक दिया, फिर युधिष्ठिर पर गदा फेंकी, धर्मराज ने उस गदा को उठाकर चलाया, आपस में टकराई, चिंगारियां निकली और द्रोणाचार्य का क्रोध बढ़ गया। सब वहां पर बड़ा भारी पराक्रम हो रहा था। के राज बृहत क्षेत्र को आते देखकर क्षेम धूर्ति ने बाण द्वारा उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। दुर्मुख ने बड़ा युद्ध किया। भीमसेन का अलंबुस का युद्ध हो रहा था, अलंबुस एक राक्षस था, फिर उसकी माया से भीमसेन वगैरह घबरा गए तो घटोत्कच ने कहा, पिताजी आप एक तरफ हो जाएंगे, राक्षसों की विद्या को राक्षस ही जानते हैं, आकर वो बड़ा बड़ा खड़ा हो गया। वो अलंबुस ने देखा ये कौन आ गया, अलंबुस का क्रोध बढ़ गया, उसने घटोत्कच की छाती पर चोट पहुंचाई और घटोत्कच ने फिर अम्बुलस की छाती में 20 बाण मार करके सिंह के समान गर्जना की और वो घायल होकर के गिरा। घटोत्कच ने जाकर छाती पर लात मारी, लात मारने से उसके प्राण घबराए, तब उसने उसको उठा लिया, गठोत्कच ने उठा लिया, जोर से उसको घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया और वहीं पर इसके प्राण निकल गए अम्बुलस के। इस प्रकार अलम्बुस के प्राण निकल जाने पर भीमसेन ने कहा, अरे वाह घटोत्कच, तुमने तो बड़ा विलक्षण काम किया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम वही वो कथा सुनाते हो जिसमें हमारे कौरवों का पराजय होता है, तुम द्रोणाचार्य की कथा सुनाओ ना, द्रोणाचार्य कैसे युद्ध कर रहे थे, सात्यकी उनको कैसे रोक रहे थे। संजय ने कहा, महाराज मैं चाहे कुछ भी कहूं, जो है वही तो बात कहूंगा, आपकी सेना ऐसी घबराई हुई थी और ऐसे घबराहट में वो व्यर्थ का अपना पौरुष दिखा रही थी। आचार्य का और सात्यकी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ, इन दोनों के युद्ध को हम कह नहीं सकते हैं, जितना घमासान युद्ध हुआ। तो वहां युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा कि हे द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि वीरों के साथ सात्यकी के रथ की ओर जाओ, मैं पीछे से सैनिक लेकर आता हूं। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वो गुरु द्रोणाचार्य रूपी काल के अंदर फंस चुका है। द्रोणाचार्य जी के ऊपर सात्यकी ने आक्रमण कर दिया, खूब आपस में युद्ध हो रहा था, कोलाहल हो रहा था। इस कोलाहल के बीच में राजा युधिष्ठिर के कानों में पांचजन्य संघ की ध्वनि पड़ी, उदास हो गए। तो उन्होंने उस समय सात्यकी से कहा, सात्यकी मेरा मन घबरा रहा है, अर्जुन पर कोई आपत्ति आ गई है। देखो कृष्ण पांचजन्य ध्वनि को जोर जोर से कर रहे हैं, अर्जुन का शंखनाद नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरा वीर भाई अर्जुन चला जाए, क्योंकि इस पांचजन्य की ध्वनि से मेरा हृदय कांपता है। सात्यकी तुम जाओ, कृष्ण के समान पराक्रमी हो, तुम्हारे ऊपर ये भार रखना चाहता हूं। इस समय तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा, तुम्हारा गुरु अर्जुन संकट में है, तुम संग्राम भूमि में उसके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण दे देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, ये दोनों समान है मेरी दृष्टि में। मित्रों को अभय देने वाले एक तो कृष्ण है, दूसरे तुम हो, वे भी मित्रों के लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं। देखो एक पराक्रमी वीर विजयश्री की लालसा से संग्राम में जूझता है, तो दूसरे वीर को उसकी सहायता करनी चाहिए। इस समय हमारी सेना में तुम्हारे अलावा दूसरा कोई अर्जुन की सहायता नहीं कर सकता है। सात्यकी, अर्जुन ने कई बार मुझसे कहा है कि ये सात्यकी मेरा प्रिय मित्र और प्रिय शिष्य है, मैं उसे प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। जाओ सात्यकी, तुम सब प्रकार से अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। भीमसेन आदि हम सब लोग द्रोणाचार्य के साथ यहां युद्ध का मोर्चा खोले हुए हैं, तुम जल्दी जाओ। देखो दिन ढल रहा है, पता नहीं अर्जुन जीवित भी है कि नहीं, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। यद्यपि जगतपति श्री कृष्ण सबकी रक्षा करने वाले हैं, फिर भी कृष्ण के संघ के साथ अर्जुन के संघ की ध्वनि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हो या अर्जुन तो मर गया हो और अब अर्जुन की मृत्यु को देखकर कृष्ण क्रोध में आकर स्वयं शस्त्र लेकर के युद्ध करते हो, कुछ पता नहीं है। तुम जाओ और वहां जाने के बाद तुम शंख ध्वनि के द्वारा मुझे इस बात का संकेत दे देना कि अर्जुन जीवित है। सात्यकी ने कहा, महाराज आपने जितनी बात कही है उसको मैं सिर से स्वीकार करता हूं, अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को देने का अवसर मिल जाए, मैं उसे अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं देवता और असुर मनुष्य सबके साथ अर्जुन के लिए प्राण दे सकता हूं, परंतु महाराज मुझे बहुत जोर देकर के अर्जुन ने कहा था सात्यकी, जब तक मैं जयद्रथ को मारकर न आ जाऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करते रहना। मैं तुम पर और प्रद्युम्न पर दो पर भरोसा करता हूं। द्रोण क्या है वो तुम जानते हो, कौरव पक्ष के सभी वीरों में सबसे श्रेष्ठ है। याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः उनको छुड़ाने के लिए वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर की रक्षा में ही रहना। अब महाराज मुझे क्या करना चाहिए? यदि यहां प्रद्युम्न जी होते तो मैं उनको आपके पास रख देता, लेकिन प्रद्युम्न जी तो है नहीं। यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए आज द्रोणाचार्य जी ने दो मोर्चे खोलकर बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। द्रोणाचार्य जी ने जयद्रथ को अपने पास तो नहीं रखा ना, उनको दूर भेज दिया, इधर वो आपको कैद करना चाहते हैं। यदि मैं आपके पास से चला गया और द्रोणाचार्य ने अस्त्र का प्रयोग करके आपको कैद खाने में डाल दिया, उस समय क्या स्थिति होगी? युधिष्ठिर बोले, तुम भी ठीक बात बोलते हो, लेकिन अर्जुन की सहायता विशेष है। तुम्हें वहां मुझे तुम्हारा जाना अधिक ठीक मालूम देता है। मेरी रक्षा भीमसेन करेंगे, दूसरे भाई लोग हैं, और ये घटोत्कच है, द्रुपद है, महारथी शिखंडी है, सब मेरे पास एक से एक बढ़कर वीर है। तुम जाओ और अर्जुन की सहायता में जाओ। सात्यकी ने कहा, ठीक है, जैसा आपका आदेश होगा अवश्य जाऊंगा। मैं सच कहता हूं कि तीनों लोकों में अर्जुन से प्रिय मेरा कोई नहीं है और अर्जुन जैसा कोई वीर भी नहीं है। और आपसे मैं ये भी कह देता हूं कि मैं जयद्रथ के वध से पहले पहले उनके पास चला जाऊंगा। ऐसा संसार में कौन है कि आप आदेश दें और उसका पालन न हो? मैं अपनी हल, शक्ति, गदा, प्राश, ढाल, तलवार, रिष्टि, तोमर, बाण सब शस्त्रों से युक्त होकर सैन्य समुद्र को पार कर सकता हूं। इतना कहकर सात्यकी अर्जुन के लिए चले गए। और जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुस गए तो महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य को रोकने के लिए उनके ऊपर ऐसा आक्रमण किया, आज द्रोणाचार्य पराजित से होने लगे। पांडवों की सेना एक बार तो इधर उधर भागने लगी, फिर युधिष्ठिर ने सबको ललकारा, भीमसेन ने ललकारा और सब प्रकार से वो सेना इकट्ठी होकर खूब जो है वहां पर युद्ध होने लगा। सबसे पहला युद्ध आचार्य का सात्यकी के साथ हुआ। सात्यकी किसी प्रकार पराक्रम को सह तो नहीं सका, परंतु वो युद्ध करता रहा। अंत में आचार्य द्रोण ने कहा, अरे सात्यकी, तू आया है हमसे युद्ध करने के लिए, तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने युद्ध करता करता युद्ध छोड़कर भाग गया था, और मैं तो युद्ध में लगा हुआ था, इतने में ही केशव की सहायता से मेरी परिक्रमा करके चला गया। अब तू मेरे साथ युद्ध करता है तो अब तू जीता नहीं बचेगा। सात्यकी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका कल्याण हो, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास जा रहा हूं, इसलिए मैं मेरा समय नष्ट नहीं करूंगा। शिष्य लोग तो गुरुओं के मार्ग का अनुसरण करते हैं, यदि मेरे गुरुजी आपको पीठ दिखाकर भग गए तो मैं भी पीठ दिखाऊं, इसमें मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। सात्यकी आगे बढ़ गए और वहां पर कृतवर्मा ने उनको घेर लिया। इतने में ही सात्यकी ने कृतवर्मा की सेना को पराजित करके फिर वो और आगे बढ़ने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना तो अनेक गुणों से संपन्न है, हमने किसी भी सैनिक को जबरदस्ती सैनिक नहीं बनाया है, हमने किसी को भी गरीब नहीं रखा है, हमने उनको समय समय पर हर समय पर उनको वेतन दिया है, उनको पुरस्कार दिया है, उनके साथ हम प्रिय भाषण बोलते हैं, इतना होते हुए भी हमारी सेना का कृष्ण और अर्जुन के सामने संहार होता है। कृष्ण और अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हमारी सेना को सात्यकी ने भी कुचल डाला। इसमें हम किसका दोष माने, भाग्य का दोष माने या हमारी सेना का दोष माने? जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा किया और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते देख लिया, उस समय उसने अपने कर्तव्य का क्या निश्चय किया होगा? अर्जुन और सात्यकी अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। उस समय सात्यकी के सहित कृष्ण और अर्जुन ने अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ। द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह द्वार पर रोक लिया, कैसे युद्ध हुआ वो मुझे सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज जितने प्रश्न आप करते हैं उनका उत्तर एक ही है, आपके सैनिकों का प्रारब्ध नहीं, सारी विपत्ति का कारण केवल आपका अपराध है। इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता न करें। आपको विदुर जी ने कैसे कहा था कि आप पांडवों को राज्य से च्युत न करें, तो आपने उनकी बात पर ध्यान दिया? जो पुरुष हित की बात करता था उस पर ध्यान दिया? बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर भी जो आपकी सहायता करता था उसके ऊपर ध्यान दिया? कृष्ण ने संधि के लिए आपसे प्रार्थना की, आपने उनकी बात पर ध्यान दिया? आपकी गुणहीनता, पुत्रों के प्रति पक्षपात, धर्म पर अविश्वास, पांडवों के प्रति मत्सर दोष, कुटिल भाव, यही सारे पराजय का मूल कारण है कि आज सर्वलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित होना पड़ा है। ये भीषण अपराध आपके कारण से हुआ है। मुझे तो आगे पीछे या मध्य में आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता। आज तक जीवन में आपने कोई पुण्य का काम किया है? मेरे विचार से तो नहीं किया है। जहां तक संग्राम की बात है, सात्यकी आपकी सेना में घुस गए, पांडव सैनिकों पर टूट गए, कृतवर्मा ने सभी वीरों को पांच पांच बाणों से बींद कर भीमसेन पर बाण छोड़े, खूब घमासान युद्ध हुआ और उसमें सात्यकी कृतवर्मा इन दोनों का युद्ध तो बड़े बड़े योद्धा लोग देखने लगे, जलसंध का वध हो गया और सात्यकी के द्वारा सुदर्शन का, राजकुमार सुदर्शन का वध हो गया, काम्बुज यवन सबका वध हो गया और भीमसेन के द्वारा आपके छह पुत्रों का वध हो गया। उसके बाद आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार हुआ। वो तिरस्कार कैसे हुआ? संजय ने कहा कि जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो कहें, दुशासन अर्जुन के सामने से भाग रहे हो, सात्यकी के सामने से भाग रहे हो, दुर्योधन तो कुशल है ना, जयद्रथ अभी जीवित है ना, तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो, तुम्हें तो युवराज पद प्राप्त हुआ है, तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो, सात्यकी के सामने भाग गए? तुम वही दुशासन हो जिसने भरी सभा में द्रौपदी से कहा था, हे द्रौपदी तू हमारी जुए में जीती हुई दासी है, अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दे, उनके वस्त्र धो, उनकी सेवा करो, अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तैलहीन तिल के समान सारहीन हो गए हैं। ये बात दुशासन तुम्ही ने बोले थे, तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं बैर बांधा था, आज सात्यकी के सामने डर गए, कपट द्यूत में पासे पकड़ते समय तुमने ये नहीं समझा कि एक दिन ये पासे हमारे छाती में बाण बनकर के चुभेंगे, तुम सेना के नायक बने बने डर करके भागते हो, संग्राम भूमि में ठहरना कैसा मुश्किल काम होता है, ये तुमने पहले सोचा? तुमने, कर्ण ने, शकुनि ने और दुशासन ने ये सारा संकट अपने अपराधों से लिया है। जाओ, निकलो यहां से, गांधारी के पेट में घुस जाओ और उनको कहो ये पांडव हमको बुरी तरह से मारते हैं, हमको छिपने की जगह नहीं मिलती है। अरे तुम्हें कोई भागने की नहीं सूझता है तो जाओ, राजा युधिष्ठिर के चरणों में पड़ो और कहो बड़े भैया हमसे भूल हो गई, भीष्म जी ने, हमने तुम्हारे भाई से कितनी बार कहा था पांडव लोगों को तुम नहीं जीत सकोगे, संधि कर लो, मानी तुमने एक बार। ये भीमसेन देखो राक्षस के समान तुम्हारे एक एक का नाश कर रहा है और दुशासन ये भीमसेन तेरा खून पिएगा। तुम मैदान छोड़कर भागना जानते हो, जहां सात्यकी है वहां मुझे ले जाओ, या तो तुम जाओ नहीं तो मुझे ले जाओ, तुम इन पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर सकते। दुशासन ने मुंह लटका लिया, अनसुनी कर दी और युद्ध में पीठ फेर करके वो यवनों की सेना में चला गया। इधर सात्यकी ने उसका भी संहार कर दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा कई बड़े बड़े योद्धाओं का वेद क्षत्र धृष्ट केतु क्षेम धर्मा आदि का वध हुआ और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने घबरा करके भीमसेन को कहा, भीमसेन तुम जाओ अर्जुन के पास, अकेले अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तुमको जल्दी जाना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को घबराते देख करके, महाराज इतने घबरा गए आप? ऐसी घबराहट तो पहले हमने कभी नहीं देखी थी, इतने अधीर होते? अर्जुन पर आपको भरोसा नहीं, कृष्ण पर आपको भरोसा नहीं? चलो मैं तो जो आप आदेश देंगे उसको मैं मानूंगा, परंतु इतना घबराना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर कहा, भैया देखो ये कृष्ण का जब मैं पांचजन्य शंख सुनता हूं और अर्जुन का इसके साथ में शंख नहीं बजता है, तो इसी कारण से मैंने सात्यकी को भेजा, इसी कारण मैं तुमको भेज रहा हूं। यदि मैं एक पल भी अर्जुन का स्वर सुन लेता तो मुझे कोई भय नहीं था। अर्जुन के शंख की ध्वनि नहीं आ रही, बार बार कृष्ण की ध्वनि क्यों आ रही है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, जाओ भीमसेन मेरी बात को स्वीकार करो। इस प्रकार भीमसेन धृष्टद्युम्न से कहने लगा कि धृष्टद्युम्न अब मेरे भाई धर्मराज का जीवन का भार आप पर है, सात्यकी भी रवाना हो गए, मैं भी जा रहा हूं, इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, जहां मरणासन जयद्रथ होगा वहां मुझे जाना ही होगा, लेकिन आप इसकी रक्षा इनकी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से भीमसेन आगे बढ़े, द्रोणाचार्य ने सेना के ऊपर आक्रमण किया और द्रोणाचार्य कह रहे, भीमसेन तुझे अपने बड़े भाई की आज्ञा माननी है कि गुरु की आज्ञा माननी है? गुरु तुमको कहता है तुम जा नहीं सकते हो, पहले मुझसे युद्ध करो। भीमसेन की आंखें लाल हो गईं। अर्जुन ने आपकी अनुमति से रणांगण में प्रवेश किया हो ऐसी बात नहीं, वह तो दुर्धर्ष है, सेना में घुस सकता है, बड़ा आदर करता है। मैं अर्जुन के समान दयालु नहीं हूं महाराज, मैं तो आपका शत्रु भीम हूं। अर्जुन तो आपको कहते थे मैं शिष्य अर्जुन हूं, मैं कहता हूं मैं शत्रु भीमसेन हूं। खूब जोर से दोनों का युद्ध हुआ। एक बार तो आचार्य को रथ सहित उठा करके फेंक दिया भीमसेन ने, फिर द्रोणाचार्य ने अपनी शक्ति भी उठाई, भीमसेन ने उस शक्ति के 20 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से उनको बुरी तरह से घायल कर दिया और भीमसेन अब वहां आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़े तो उन्होंने सात्यकी को देखा, उन्होंने कृष्ण के रथ के ऊपर युद्ध करते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन को देख करके भीमसेन ने जोर से सिंहनाद किया और वो सिंहनाद कृष्ण और अर्जुन के कानों में भी पड़ा और वही सिंहनाद युधिष्ठिर के कानों में भी पड़ा। युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और वो मन ही मन कहने लगे, वाह भीमसेन, तुमने हमको खूब अच्छी सूचना दी, बड़े भाई का तुमने बड़ा आदर किया, जिनसे तुम द्वेष करते हो संग्राम में उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। बस बस मुझे बहुत आनंद का अनुभव है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों इस समय सिंहनाद करते हुए, तुम्हारे स्वर से मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, दोनों कायम है। अब कृष्ण जाने, सूर्यास्त जाने, अर्जुन जाने, प्रतिज्ञा जाने, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारा काम कृष्ण ने अपने हाथ में लिया है। अब देखो कब कृष्ण और अर्जुन से मेरी भेंट होगी। ऐसा मन में विचार करते करते युधिष्ठिर महाराज को बड़ी शांति मिली। अभी वध नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल से जयद्रथ को, इतनी बड़ी सेना राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री